करूं आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चे दिल पर साहब राज हर श्रीमत पर कहे हाजी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आंच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यार जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सच्चा साफ रहे निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
ओम शांति। आप सब स्पेशली जो हमारी माताएं हैं इस बात के लिए बहुत फेमस है कि उनका दिल हमेशा कैसा होता है, सच्ची दिल होती है उनकी, इसलिए बाबा को माताएं बहुत प्यारी लगती हैं। तो आज का टॉपिक भी आपके लिए रखा गया, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हम आप सभी एक घंटा लगभग एक घंटा हमारे पास है, तो एक घंटे में हम बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, अगर हमने अपनी दिल सच्ची रखी तो साहेब माना शिव बाबा हमारे पर राजी हो जाएगा, और शिव बाबा अगर राजी हो गया तो क्या हो जाएगा, हम सब क्या बन जाएंगे, आने वाले सत्युग में स्वर्ग में हम राजा रानी बन जाएंगे, ठीक है, प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। जिन पे साहब राजी होगा वो क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, है ना, बनना है प्रिंस प्रिंसेस, जिनको प्रजा बनना है वहां से तो, जो प्रजा में आना चाहते हैं वहां से तो, कोई भी प्रजा में नहीं आना चाहता ना, तो हमें अगर हमें राजा बनना है, राजा रानी बनना है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, तो ये बात आप ध्यान से समझना कि कैसे हम अपने दिल को सच्ची बनाएं ताकि बाबा उसमें आके रह सके, क्योंकि बाबा सिर्फ सच्ची दिल में रह सकता है, झूठी दिल में बाबा रह नहीं सकता। तो पहले तो हम समझें सच्ची चीज, सच्चा सत्य किसे कहते हैं। आज मुरली में भी बाबा ने कहा, मम्मा के जो महावाक्य थे उसमें भी मम्मा ने क्लियर किया सत्य क्या है, मैं भी थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, सत्य क्या है, फिर दिल क्या है, और दिल में ऐसा क्या हो कि शिव बाबा आके मेरे दिल में रहने लग जाए, परमधाम छोड़ के कहां रहना शुरू कर दें शिव बाबा, शिव बाबा मेरे दिल में रहे और मैं बाबा के दिल में रहूं। बाबा के दिल में कौन रह सकता है, जो बाबा को अपने दिल में बिठाए वही बाबा के दिल में रह सकता है ना। तो आज हम समझते दिल क्या, पहले हम समझते सत्य क्या है। सत्य सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सत्य या सच, सच जिसे मैं कहा सच्ची दिल ना, सच्ची क्या है, सच्ची का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है। सत्य में दो विशेषताएं होती हैं, एक तो सत्य अविनाशी होता है, सत्य कभी मरता नहीं है, न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, अविनाशी है, इमॉर्टल है, जैसे आज मुझे में था ना इमॉर्टल है, एटर्नल है, सदाई है, कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता। दूसरी बात, सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य कभी भी बदलता नहीं है, जैसा है आज से हजारों साल पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है, और आने वाले हजारों साल लाखों साल भी वैसा ही रहने वाला, ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं। झूठ क्या होता है, झूठ अभी कुछ बदलता रहता है ना, और झूठ पैदा करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ करना पड़ेगा ना, और झूठ एक दिन रहेगा भी नहीं, खत्म भी हो जाएगा ना। सत्य हमें उसको पैदा नहीं करना पड़ता, सत्य सत्य ही है, सदा ही सत्य है, राइट। तो सत्य जब हम ऐसा सत्य बनते हैं, पर एक ही सत्य है अभी दुनिया में जो सदा ही है, वो कौन सा है, कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सदा सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, ऐसे बोलते हैं ना। तो परमात्मा सत्य क्योंकि सदा ही है, वो अविनाशी है, परमात्मा का कभी जन्मदिन नहीं है कि इस दिन परमात्मा पैदा हुआ इस दिन मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, परमात्मा कभी बदलता नहीं है, वो सदा ही एक जैसा है, सदा ही सात गुणों का सागर है, सातों गुणों से भरपूर है ना, सदा ही उसका निवास स्थान भी वही है, मूल वतन ही है ना, उसका स्थान और कोई नहीं है। यहां पर हमारी दुनिया में आता है, साकार वतन में आता है कितनी देर के लिए, दो घंटे, चार घंटे, छह घंटे के लिए आएगा, मुरली चला के चला जाएगा, पर उसमें भी वहां पर भी है यहां पर भी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। शिव बाबा जब बाबा के तन में आते हैं तो यहां भी शिव बाबा है वहां भी शिव बाबा, ऐसा हो सकता है कि नहीं, यानी वहां पर नहीं होगा, वहां से बाबा नीचे आ गया तो अब बाबा ऊपर नहीं होगा, ऐसा है क्या, क्या समझते हो, जब बाबा ऊपर से नीचे आता है तो परम धाम खाली हो जाता है, माताएं क्या समझती हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, सूरज है ना जो आसमान में सूरज है, मैं अपनी कार चला के जा रहा हूं उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ कार चला के जा रहा हूं, ठीक है, तो सूरज मेरे सामने साथ साथ जा रहा है, तभी चेन्नई से मेरे किसी फ्रेंड का फोन आता है, किसी दोस्त का फोन आता है, तो मैं उसको बोलता हूं कि मैं ना नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, सूरज मेरे साथ साथ आ रहा है, लगता है ना कार में सूरज मेरे साथ साथ आ रहा है, ऐसा लगता है ना, शाम के टाइम स्पेशली ज्यादा लगता है, और वो जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, वो भी कार चला रहा है, कार में कहीं जा रहा है, तो मैं बोलता हूं, कहता कहते नहीं मेरे साथ भी सूरज आ रहा है, उसको भी लग रहा है कि सूरज मेरे साथ चल रहा है, सूरज अलग अलग है, यहां का अलग है, चेन्नई का अलग है, कि यार सेम सूरज है, सेम सूरज है ना, वही मेरे साथ नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, उत्तर से दक्षिण, और वही सूरज उसको क्या फील हो रहा है, कि वही सूरज उसको दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है महसूस होता है। तो ये जो परमात्मा है सदा, मतलब परमात्मा जो सदा सत्य है, सदा ही है, और एक ही है जो सबसे ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई टीचर नहीं है, उसका गुरु नहीं है कोई, उसकी कोई मां नहीं है, है शिव बाबा की मां कोई है क्या, माताएं मां बन जाती है वैसे उसकी, है ना, कि उसको अपना बच्चा बना लेती हैं, कल की मुझे में था ना बाबा ने बताया था कि बाबा को बच्चा बना लेते हैं ना, पर वो सिर्फ 100 साल का पार्ट है ना, संगम में बाबा तो बाबा को हम कुछ मर्जी बना सकते हैं ना, कि तो वैसे बाबा का किसी का बच्चा नहीं होता, बाबा की मां कोई नहीं है ना, बाबा का कोई भाई नहीं है ना, हम आत्माओं के भाई हैं, है नहीं, बाबा का कोई दोस्त वैसे कहें दुनियावी कोई दोस्त तो बाबा का कोई है नहीं, है ना, बाबा का कोई और कौन नहीं है, साजन है बाबा का कोई, बाबा को साजन है, बाबा का कोई सर्जन नहीं, आवश्यकता नहीं है उसको ना, बाबा का कोई, वैसे हम बच्चे हैं पर बाबा फिर भी सबसे न्यारा प्यारा है ना, तो बाबा जो है बाबा अल्टीमेट है, राइट। तो सच्ची सत्य का मतलब ये है, राइट, एक परमात्मा सदा सत्य है, सदा सत्य है। आत्मा, आत्मा क्या समझते हैं? आत्मा भी सत्य है, सदा सत्य है, आत्मा सदा सत्य सत्य है। जो मैं जो चलिए दो मिनट बाबा को याद, ओम शांति। तो मैं बात कर सत्य की, हम सत्यता की हम बात कर रहे थे, सच्चाई की हम बात कर रहे थे। सच्चाई की दो बातें हैं, एक तो सत्य सदा अविनाशी है, एटर्नल है, इमॉर्टल है, उसका ना जन्म होता है ना कभी मरता है। दूसरी बात, सत्य कभी बदलता नहीं है। ये दो विशेषताएं हैं सत्य की। परमात्मा सदा सत्य है, सदा ही सत्य है। हम सभी जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, इसका क्या अर्थ है? शिव ही सदा सत्य है, शिव सदा सत्य है, परमात्मा सदा सत्य है, और आत्माएं अगर एक एक वैसे तो आत्मा भी सत्य है, क्योंकि तो एक बात में आत्मा सत्य नहीं है। आत्मा आधा कलप सत्य है, सत्य त्रेता में सत्य है, सत्य में सत्व प्रधान भी, सत्व प्रधान शब्द सात गुणों का, परमात्मा सात गुणों का सागर है, सदा ही सागर है। किंतु आत्मा आधा कलप सत्य है, मतलब आधा कलप सातों गुणों से भरपूर है, और आधा कलप क्या है? रजोतमो में आ जाती है ना, तो उसकी बदल गई ना, थोड़ा परिवर्तन हो गया, स्टेज में परिवर्तन हो गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया। वहां पर सतो प्रधान और सतो सती त्रेता में, और द्वापर कलयुग में रजो प्रधान और तमो तमो प्रधान हो जाती है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है। परमात्मा सदा ही सात गुणों का सागर है, किंतु आत्मा में पहले सात गुण भरपूर सत्य के शुरू में, त्रेता में दो कला कम, द्वापर में रजो माना आठ कला रह गई, और कलयुग में नौ कला, है ना, नौ कला माना कोई कला नहीं है ना, तो बस जीरो के बराबर समझो, एक दो तीन चार % रह गए, तो एकदम कला एकदम कम हो जाती है ना। तो आत्मा इस तरह से, आत्मा इसलिए आत्मा सदा सत्य नहीं है, परमात्मा सदा सत्य है, आत्मा आधा कलप सत्य आधा कलप असत्य तो नहीं कहेंगे, किंतु आधा कलप से स्टेज बदल जाती है, ठीक है। और शिवम सुंदरम, शिव सदा ही सुंदर है, सुंदर माना पावन है, पावन है ना सदा ही, और आत्मा आधा कलप क्या है? सुंदर है, पावन है, और आधा कलप क्या है? श्याम है। श्याम माना काली हो गई ना, सांवरी हो गई ना, विकारों कारण काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण सामरी हो जाती है, विकारी विकारी हो जाती है, इसलिए आत्मा की स्टेज बदल जाती है। ओके, अभी हम बात करते हैं दिल क्या चीज है। सच्चाई की हमने बात की, अब दिल की बात करते हैं। देखो आज आपको ऐसा विधि पता लगेगी कि कुछ ज्यादा पुरुषार्थ, कहते हैं ना बाबा को याद करना बड़ा मुश्किल है। कई लोग, कई माताएं, कई भाई बहन कहते हैं कि बाबा की याद बनी रहे लगातार, ये बड़ा मुश्किल है, बीच बीच में याद टूट जाती है। कैसे हम ऐसी याद बनाएं कि हमारी निरंतर याद हो जाए? तो आज हम उसी विधि को डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि वो विधि हमारे पास सहज हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना मुश्किल ना लगे, बल्कि बाबा को भूलना मुश्किल लगे। और हमारी दादी प्रकाशमणि जी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। दादी प्रकाशमणि जिनकी हम पुण्यतिथि परसों होने वाली है 25 अगस्त को, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल सच्चे दिल पर साहब राजी क्या होता है, कैसे दादी पर सदाई शिव बाबा राजी रहते थे, मैं उसके भी अभी छोटे अनुभव आपको सुनाऊंगा प्रैक्टिकली, जहां उसका कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे बाबा उन पर सदा राजी रहते थे, है ना, कैसे बाबा को क्या, उनसे क्या कनेक्शन था दादी का, है ना। तो दिल क्या चीज है? दिल जो आत्मा के, आत्मा है ना अति सूक्ष्म है, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, भूमि जल वायु अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर बना है। और जो आत्मा है वो 5 तत्वों से नहीं बनी है, वो ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। शरीर को हम देख सकते, तत्व है इसलिए हम देख सकते हैं, किंतु आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा को हम देख नहीं सकते, ना आंखों से देख सकते हैं, ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कोई भी चीज से हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो इन आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। इवन जो बाबा कहता है हम इसको ज्ञान के तीसरे तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कई अपने आप को विजुलाइज करते हैं, मैं आत्मा हूं यहां पर चमक रही हूं, वो भी गलत तरीका हो जाता है। मैं आत्मा ऊर्जा हूं ये महसूस करना जरूरी है। ठीक है, शरीर तत्वों का बना हुआ जड़ है और मैं आत्मा इसमें चैतन्य ऊर्जा हूं, राइट। तो अपने आप से चलते फिरते महसूस करना, जैसे इस तार में बिजली जा रही है नहीं जा रही, आप क्या कहेंगे बिजली जा रही है नहीं जा रही, क्या प्रूफ है जा रही है? माइक काम कर रहा है ना, आवाज आप तक आ रही है तो माइक में इसमें जा रही है। अगर हम बिजली को देखना चाहें देख सकते हैं, बिजली जल रही है पता है, पंखा चल रहा है तो इसका मतलब ठीक है, किंतु क्या हम देख सकते हैं बिजली को इसमें? अगर रबड़ उतार दें तो तांबे का तार आ जाएगा, तांबे के तार में बिजली दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। और अगर जाए, अगर दिखाई भी दे जाए चलती हुई तो फायदा है कुछ इससे? कोई कहे नहीं मैं तो नहीं मानता इसको, इसमें बिजली जा रही है तो क्या करेगा? बिजली को तार को हाथ लगा के देख ले तो पता लग जाएगा ना। अगर नंगे तार को हाथ लगा के देखें पता लगेगा? लगेगा, लगेगा ना। तो इसी तरह से हमको ध्यान करने का है, हमारी जो आत्मा को देखने की कोशिश भी नहीं करनी होती है ना। आत्मा एक ऊर्जा है, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम उसको इमेजिन करने की बात नहीं है। आत्मा जो है जैसी है वो हमको अनुभव होगी, ठीक है। रियल क्या है, सत्य क्या है, वो हमको जब उस चलते फिरते अभ्यास करेंगे तो हमको अनुभव होगा। तो आत्मा से सात ऊर्जाएं निकलती रहती हैं हमेशा, जैसे बल्ब से दो लाइट निकल रही हैं, दो एनर्जी निकल रही है, एक तो लाइट एक गर्मी। अगर आप यहां बैठेंगे तो आपको गर्मी लगेगी क्योंकि बल्ब में गर्मी बहुत है ना, आपके ऊपर कम लाइट पड़ रही है, इधर ज्यादा लाइट पड़ती है तो उसमें गर्मी भी ज्यादा होती है। तो लाइट और गर्मी दो गुण है आत्मा इसकी, बल्ब के ना सामने जो बल्ब है, ऐसे ही आत्मा के अंदर सात गुण है, सात उसके अंदर से ऊर्जाएं निकलती हैं। ज्ञान, पहला ज्ञान है, ज्ञान माना सत्य की समझ, ज्ञान माना समझ, किसकी समझ? सत्य की समझ। सत्य क्या है? सत्य है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। पहला सत्य तो यही है, देह तो मर जाएगी, एक दिन पैदा हुई एक दिन मर जाएगी। मैं डॉक्टर हूं ये भी, डॉक्टर तो पैदा हुआ तो नहीं था, डॉक्टर भी एक दिन बना, कभी भी डॉक्टर छोड़ सकते हैं, है ना। पर डॉक्टर खाली नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, घर में हम और भी रोल निभाते हैं, है ना। किसी के बेटे होते हैं, किसी का भाई होते हैं, किसी की बहन होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के माता होती है, किसी की पत्नी होते हैं, किसी के पिता पति होते हैं ना, किसी का बच्चा होते हैं, तो ये भी अलग अलग रोल हो गए ना। तो ये भी सत्य नहीं कि सदा बदलता रहता है, सदा तो नहीं है, एटर्नल तो नहीं है। तो ये जो है ये सत्य नहीं है ना, ये देह सत्य है ना, हमारा रोल जो लेवल लगा ना यहाँ पे, ये भी सत्य नहीं है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, राइट। तो ये सत्य की समझ, ज्ञान माना ये, ज्ञान माना मैं कौन हूं, मैं देह नहीं, मैं देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। फिर दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य है मैं आत्मा इसकी संतान नहीं, कोई फला माँ है या उसका पिता है उसका, उसकी संतान नहीं, ये शरीर के माता पिता हो सकते हैं, किंतु मैं जो आत्मा हूं वो परमात्मा की संतान है। दूसरा सत्य परमात्मा है। तीसरा सत्य कौन सा है? तीसरा सत्य कि जो हमारे संबंध है, देह के संबंध है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे और दूसरे संबंध दोस्त, वो सब संबंध सदा के लिए है क्या? सदा के लिए तो नहीं है, आ जाए कल खत्म हो जाएंगे, कोई मर जाएगा, कोई स्थान छोड़ जाएगा, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। आज अभी प्यार से रहते हैं कल झगड़ा हो जाएगा, होता है ना, सुबह 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 प्यार से बोल रहे हैं थोड़ी देर झगड़ा शुरू हो जाता है, एक घंटे में क्या 15 मिनट में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्या एक मिनट में ठीक ठाक होते हैं एक मिनट झगड़ा शुरू हो जाता है, तो संबंध रहता भी नहीं है, है ना। तो वो संबंध हमारे सदा नहीं है, वो सिर्फ एक के साथ एक ही संबंध हो सकता है। और बाप से हमारे कितने संबंध है, कितने संबंध है? मुख्य 9 संबंध हमारे बाबा के साथ, वैसे तो हमारा हर संबंध बाबा के साथ हो सकता है, कि तो मुख्य 9 संबंधों का अनुभव सबको होना चाहिए, और यह भी योग है। एक तो माँ, शिव बाबा हमारी माँ है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारी माँ का रोल प्ले करती है, दूसरा हमारा टीचर है, हमारा बाप है, सारे के सारे जो संबंध है बाबा के साथ हमारे, वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम अनुभव करते हैं। शिव बाबा जो भी संबंध हमारे साथ निभाते हैं किसके साथ, किसके थ्रू निभाते हैं, किसके थ्रू, ब्रह्मा बाबा के, चाहे माँ का रोल निभाए, चाहे बाप का रोल निभाए, चाहे टीचर का रोल निभाए, चाहे सतगुरु का हो, चाहे बंधु माना बड़ा भाई हो, चाहे सखा हो, मतलब दोस्त, सर्जन साजन हो, सर्जन हो, बच्चा हो, ये मुख्य नौ संबंध का बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। वैसे तो बाबा के साथ हम कोई भी संबंध अनुभव कर सकते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं बाबा को अपने साथ ड्राइवर बना लो, कपड़े धो रहे हैं बाबा को आ जाओ बाबा कपड़े धो लेते हैं, जो भी आप काम करो ना बाबा को अपने साथ लगा सकते हो, है ना। कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो बाबा को बुला लो, कुछ भी काम करो, खाना खाओ बाबा आपके साथ खाना खा लेगा, बाबा को हर चीज में अपना साथी बना सकते हो, है ना। कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो बाबा आपके साथ है, हर संबंध से साथ है। तो एक तो बाबा से हमारे साथ संबंध है, और दूसरा सदा है, सदा माना हर 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 जगह है और हर समय है। दुनिया के संबंध हम हर संबंध नहीं होता, हर जगह नहीं होता। किसी जगह पर सपोज आप अभी अपने घर में है, लौकिक परिवार में है, तो आपके पति हैं, बच्चे हैं, वो साथ में है। यहाँ पर ना पति है ना बच्चे हैं, है ना, है क्या, यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर तो साथ नहीं है ना, हर समय साथ तो नहीं हुआ। आपको सिर दर्द हो रहा है कोई प्रॉब्लम, तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो आप एवर हेल्दी में जाएंगे या कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे दिखाने के लिए, तो घर में तो भले डॉक्टर हो आपका हस्बैंड, तो आपको यहाँ तो मदद नहीं कर सकता, है ना। तो बेसिकली जो है एक बाबा के साथ हमारा संबंध सत्य है, क्योंकि सरल संबंध है, हर समय है, हर जगह है, खाली संगम पे नहीं है, इवन और भी डिफरेंट युगों में भी हमारा बाबा के साथ संबंध रहता ही है। हम द्वापर युग से उसको याद करना शुरू करते हैं, सत्युग में हमें एक एक अनुभूति हमारे संस्कारों में चली जाती है, बाबा के साथ की अनुभूति हमारे संस्कारों में समा जाती है, बाप के साथ की अनुभूति प्रलब्ध के रूप में हम उसको इजी यूज करते हैं, और द्वापर कलयुग में उसको हम संबंध में याद करते हैं। संगम में तो बाबा प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। और चौथी बात ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा, नाटक, ये भी सत्य है, ना। तो ये सत्य, इस संसार रूपी नाटक में हम हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और शिव बाबा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ, कैसा हुआ है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है, बोलो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। जैसे जो भी आपके साथ आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सास ससुर या पति पत्नी जो भी मिले हैं, संबंधी मिले हैं, ओके, क्यों मिले हैं आपको, दूसरा कोई क्यों नहीं मिला, वही क्यों मिले, पीछे जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। कोई आपको सुख दे रहा है, कोई आपकी रोज इंसल्ट कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनको किया हुआ है ऐसा ही, सुख दिया तो आपको फिर सुख ब्याज के साथ सुख दे रहे हैं, इंसल्ट किए तो ब्याज के साथ इंसल्ट कर रहे हैं, दुख दिया तो ब्याज के साथ दुख दे रहे हैं। तो इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, पहले में समझ नहीं थी, ज्ञान माना समझ, पहले में समझ नहीं थी कहां भटक रहे थे हम, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं ऐसा करूंगी, इसके हम ऐसा करेंगे, इसको मैं देखना भी पसंद नहीं करती, है ना, क्योंकि हम समझते ये मेरे जो मेरी जो मेरा दुख है उसके लिए व्यक्ति दोषी है। हमारे पास हार्ट के पेशेंट आते हैं ना हॉस्पिटल में, डॉक्टर मैं हॉस्पिटल में जब हमारे दिखाने आते हैं ना पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, तो हमेशा मैं उनको कहता हूँ अपने स्पाउस के साथ आ जाओ, अगर कोई लेडी बीमार है हार्ट की पेशेंट है तो अपने पति को लेकर आती है, और पति बीमार है तो अपनी पत्नी को लेकर के आता है हमेशा, ये हमारे पास आने का नियम है, ओपीडी में दिखाना हो तो, और प्रोग्राम में आना हो हार्ट के प्रोग्राम में तो भी वहां भी ऐसे ही होता है। तो जब भी मैं पूछता हूँ किसी को, मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, उसको मैं कहता हूँ अच्छा आपकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो गई, आपकी हार्ट में ऐसे ब्लॉकेज कैसे हो गई, तो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, तो पता जैसे उसने उसकी आर्टरी ब्लॉक की हो, अगर कोई औरत बीमार, लेडी कोई बीमार है, अगर उसकी उसको मैं पूछता हूँ आपकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो गई, तो अपने पति की तरह देखती है कि इसने मेरी आर्टरी ब्लॉक की। तो ऐसे कोई आर्टरी किसकी ब्लॉक करता है क्या? नहीं, उसने जो किया उसका पार्ट जाने, ये तो मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा, मैंने किस इस बात को कैसे लिया, राइट? तो जो हुआ अच्छा हुआ। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में कोई दोषी नहीं है। मैं अपनी बीमारी का दोष, अपने दुखों का दोष, अपनी परेशानियों का दोष किसी बात डाल नहीं सकता, ये डाल नहीं सकती, ठीक है? क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचार कहां से आते हैं? 90% विचार कहां से आ रहे हैं? पास्ट से आ रहे हैं। जो पास्ट में हमारे साथ बीत गया, भूतकाल में जो हमारे साथ बीता, उस वहां से हमारे विचार आ रहे हैं, और वो व्यर्थ विचार है, नेगेटिव विचार। हमारा ज्यादातर समय 90% जो समय है वो खा जाते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, हमारे चित्त में चले जाते हैं, चित्त को बेचैन कर देते हैं, चित्त चंचल हो जाता है, अशांत हो जाता है। और जिसका चित्त चंचल हो जाए, अशांत हो जाए, उसको भी परमात्मा को याद कर सकता है? याद नहीं कर सकता। तो ये जो है, ये समझने की बात है। तो इसको मैं ABCD कहता हूं, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो ये जो ABCD है ना, ये ज्ञान है, सार रूप में ज्ञान ABCD यही है। इससे अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है अभी क्या हो रहा है, अभी बाबा ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा लिया। अच्छा, सच्चा ब्राह्मण हमेशा बाबा की गोद में रहता है, हमेशा उसको फील होता है मैं बाबा की गोद में बैठा हूं। ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्म माना बेहद, मन। जिसका मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे वो है ब्राह्मण। मनुष्य माना जो मन के वश में है। मन किसके वश में? विकारों के वश में। तो मनुष्य का मन और बुद्धि विकारों में रहता है, और ब्राह्मण का मन और बुद्धि कहां रहता है? बेहद। बेहद माना, बेहद क्या है? बेहद है, देह के संबंध हद है, देह के पदार्थ भी हद है, और देह के स्वभाव, ये 5 विकार देह के स्वभाव है, और देह के संस्कार आलस है, चिंता है, भय है, जल्दीबाजी है, ईर्ष्या द्वेष है, ये देह की आदतें हैं। तो ये देह के स्वभाव संस्कार, ये मनुष्य इसमें खोए रहते हैं। और ब्राह्मण जो है वो ABCD बेहद है, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा परमात्मा का संबंध बेहद है, और ड्रामा बेहद है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहे, राजयोग सिखाकर मेरे सारे 63 जन्मों के विक्रम विनाश करा के मुझे पावन सत्व प्रदान बना के अपने साथ वापस घर ले जा रहे। तो ये जितना हम ABCD का अभ्यास करें, तो दिल माना, दिल किसे कहते हैं? जो आत्मा से पहले एनर्जी, आत्मा 7 एनर्जी निकल रही है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, प्रेम माना रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियां, 8 शक्तियां, ये आत्मा से एनर्जी निकल रही है। और जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा है, आत्मा यहां है, यहां से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, जहां एनर्जी सबसे ज्यादा है उसको दिल कहते हैं, ठीक है? तो दिल क्या चीज है? इसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो दिल माना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा, दिल। ये दिल तो हमारा बॉडी का दिल है, ये तो पंप है, इसमें 4 चैम्बर है और चारों में खून भरा रहता है। हम लोग कहते हैं वो मेरे दिल में समा गया, वो दिल में मेरे बैठ गया है ना, दिल से बात निकलती ही नहीं। कौन से दिल से? इस दिल से। अगर इस दिल में कोई चला जाए तो क्या होगा, क्या होगा? मैंने तो इतने सारे हार्ट फूले हैं, मेरे को तो आज तक कोई नजर नहीं आया। लोगों के दिल में कहते हैं, दिल में मेरे कोई समाया, इधर हाथ लगा के बताते हैं, इस दिल में तो इतने खून ही खून होता है, और एक अगर कोई अंदर आ भी जाए तो 70 बार तो उसको बाहर निकलना पड़े। एक दिल में 70, एक दिल जो है हमारा 1 मिनट में 70 बार यूं करता है ना, धड़कता है। तो अंदर रह सकता है इसमें कोई? इसमें कोई रह नहीं सकता है। ये आत्मा का दिल की बात है। तो इस आत्मा के दिल में अगर ये ABCD है, ये ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान बाबा का है। तो ये आत्मा का दिल है। इस ज्ञान का जितना मनन चिंतन मंथन सिमरण करें, जो बाबा की मुरली है, ज्ञान में क्या है, मुरली में क्या होता है, मुरली में भी ABCD होता है। आत्मा के बारे में बाबा बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा परमात्मा संबंध, बाप टीचर सतगुरु और बाकी संबंध के बारे में बाबा बताते हैं, और D4 ड्रामा सृष्टि के आदि मध्य अंतर ज्ञान बताते हैं, यही बताते हैं ना। तो बाबा रमणीक तरह से ज्ञान के डिफरेंट, जैसा सागर में लहरें होती ना, अलग अलग ढंग से उसी बात को, इन्हीं चार बातों को बहुत गहराई से समझाते हैं ताकि बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए। पर ये चार बातें ही होती हैं मुख्य। तो जितना अधिक हम इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते, उतना हमारे अंदर हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाती। यही मेहनत है, इसी को मेहनत कहते हैं। बाबा कहते ना, मेहनत है, याद में मेहनत है, और यही याद है। राजयोग मेडिटेशन क्या है, राजयोग मेडिटेशन क्या है, राजयोग मेडिटेशन की परिभाषा यही है। राजयोग मेडिटेशन माना सत्य को अनुभव करते रहो, रियलाइजिंग द ट्रूथ। सत्य क्या है, ये बाबा की मुरली, बाबा सत्य है और बाबा की मुरली सत्य है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इसी को अनुभव करते रहो। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उसे के संबंध को अनुभव करो, और डी ड्रामा जो हुआ अच्छा, कोई भी बात आए, इसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, इसने मेरे को कुछ कहा, मैंने, इसने मेरे को क्यों कहा ऐसा, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूर पिछले जन्म में मैंने ऐसा किया होगा। एक बार आया था ना मुरली में, कोई अगर पुरुष स्त्री को मारता क्यों मारता है, क्या कहा बाबा ने, सुना था मुरली में, क्यों मारते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसको मारा था, है ना? तो कोई ऐसे नहीं मार रहा है, ऐसे मार भी नहीं सकता कोई। तो हमारे कर्मों का फल ही हमको मिल रहा है, कर्म करने की छुट्टी हम सबको है, किंतु फल पाने की छुट्टी हमको नहीं है, राइट? तो जितना अधिक इसको आप करते जाओगे, इसका मनन चिंतन मनन चिंतन मंथन सिमरण माना मनन माना रिवाइज करना। जैसे आज की मुरली बाबा की है, जैसे मुरली होते ना, जैसी मुरली को मैं लव लेटर कहता हूं ना, ये बाबा का लव लेटर हम आत्माओं के लिए ना, सजनियों के लिए। हम सब कौन है बाबा की, बाबा हमारा साजन है और हम आत्माएं क्या है, सजनी है। तो ये बाबा का लव लेटर होता है। तो लव लेटर हम कहां रखते हैं, कहां, दिल के पास रखते हैं ना, दिल के पास रखते हैं। पढ़ते कभी हैं लव लेटर, कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, पहले आसपास देखते हैं कोई है तो नहीं, फिर चुपचाप निकालते हैं, ऐसे छुपा के निकालते हैं ना, फिर एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फिर उसको छुपा देते, सामने से कोई आता है हम छुपा देते हैं तुरंत ना, फिर जब तक वो समय मिले तब तक फिर हम वही सोचते रहते हैं, क्योंकि बाबा बाबा मुझे क्या कहता है, बच्चे तुम तो बहुत मीठे हो, तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम तो लाडले हो, तुम तो मेरे नूरे रतन हो, है ना, मुरली में ऐसी ऐसी बातें आती है ना, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, है ना, तुम तो देवता बनने वाले हो, लोग तो कहते तुम निकम्मे हो, है ना, तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई काम, तुम्हें काम करना नहीं आता है, है ना, और बाबा कहता है मेरे को ये कहता है ना। तो बाबा की बात याद रहेगी, उनकी बात याद रहेगी, बाबा की बात तो बुद्धि में चलता रहता है। फिर देखते हैं अभी कोई नहीं है, फिर क्या करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, है ना, अभी दूसरी लाइन देखते हैं बाबा ने क्या कहा। तो ऐसे दिन में बार 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 बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, आज की ये चीज क्या थी, आज की ये चीज क्या थी, बार 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 लगे रहो इसके पीछे, है ना। तो मनन मन रिवाइज करना, चिंतन मन गहराई में जाओ। आज बाबा ने कहा बच्चे तुमको बहुत मीठा बनना, बाबा ने कहा ना आज बहुत मीठा बनना है तुमको, तुम्हें तुम्हारे अंदर क्रोध का अंश भी नहीं रहना चाहिए। तो बाबा को पूछो, बाबा हम इसकी गहराई में जाएं, मीठा का मतलब क्या होता है, चिंतन करो क्या मतलब है बाबा, मीठा माना क्या बने, मीठा कैसे बने हम लोग, मीठा माना मीठा बोले, मीठा का क्या मतलब है, मीठा कैसे बोले, सामने वाले तो गाली देते हैं, सामने वाले तो इंसल्ट करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हम मीठा कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, पर बाबा की आज्ञा है मीठा बोलो, कैसे बोलेंगे बताओ। चिंतन करो, गहराई में जाओ, ठीक है। तो समझ में आएगा मीठा माना क्या, मीठा माना डायबिटीज, शुगर की बीमारी, मीठा माना क्या, टोली खा के बोले, हम टोली खा के बोले, चॉकलेट खा के बोले, मीठा माना क्या, चिंतन करो, सोचो बार बार। फिर चिंतन के बाद मंथन, मंथन माना अभी, फिर ऐसे जब चिंतन करोगे बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा अपने आप ही, सोचते सोचते बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर बाबा को बोलो, बाबा मीठा क्या होता है, मीठा मीठा माना क्या, आप मीठा क्यों बोल रहे हैं, आप मुरली में भी शुरू करते मीठे बच्चे, फिर बाद में बोलते मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, तो मीठा मीठा क्या होता है। तो बाबा से मैंने एक दिन पूछा, तो बाबा ने कहा बच्चे मीठा माना सतो प्रधान, मीठा माना सतो प्रधान, तो जो सात गुण से भरपूर होगा, जिसमें ज्ञान भी होगा, समझ भी होगी, पवित्रता भी होगी, शांति भी होगी, सबके प्रति रूहानी प्यार भी होगा, सब अतिंद्र सुख की अनुभूति भी होगी, आनंद भी होगा, उसके अंदर सब शक्तियां भी होंगी, तो वो बच्चा सबसे मीठा व्यवहार करेगा, वो मीठा बोलेगा, मीठा मीठा देखेगा, मीठा मीठा सुनेगा, वो सब कुछ मीठा होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को मीठा बच्चा, मैंने कहा बाबा हमको मीठे बच्चे क्यों बोलते हो, तो बाबा कहते बच्चे थे जो तुम ऊपर थे ना मेरे पास परमधाम में, तो तुम बहुत मीठे थे, सितारे थे, चमकते सितारे के समान थे, तुम मेरे पास रहते थे, मुझे बहुत प्यारे लगते, तो मैं तुमका तुम्हारा वो आत्मिक स्वरूप देख के तुमको मीठे बच्चे शुरू में कहता हूँ। और बाद में मैंने कहा बाबा मीठे मीठे क्यों बोलते हो, डबल मीठा क्यों बोलते हो, तो बाबा कहता फिर जब मुरली सुनाने के बाद मैं तुमको तुम्हारा अनादि स्वरूप देखता हूँ, सत्युग वाला आदि स्वरूप देखता हूँ, जब तुम देवी देवता थे, लाइट का ताज था, रतन जड़ी ताज था, सर्वगुण संपन्न थे, सोलह कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म थे, मतलब पावन सत्व प्रधान थे सत्युग। हम ऊपर भी पावन सत्व प्रधान है और सत्युग में भी पावन सत्व, तो मीठा माना ये, अभी समझ में आई, तो मीठे मीठे बहुत मीठा बनना माना क्या करें हम, बहुत मीठा क्या बने, अगर मैं चिंतन मंथन ना करूं समझ में आई क्या, समझ में नहीं आई। तो क्रोध का अंश भी नहीं रहना चाहिए, क्रोध का अंश क्यों, क्रोध का अंश का क्या मतलब हुआ, जब मैं सातों गुणों से भरपूर हो जाऊंगा तो क्रोध कहां से आएगा, आएगा ही नहीं, समझे मेरी बात। तो इस तरह से आप मनन चिंतन मंथन, अब सिमरन, सिमरन माना अब जो मक्खन निकला कि मुझे पावन सत्व प्रधान बनना है, कैसे बनूंगा, जब मेरा बाप से कनेक्शन होगा, सात गुणों के सागर से मेरा कनेक्शन होगा, पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तभी तो करंट मेरे अंदर आएगी, तो करंट आएगी तभी तो मैं पावन सत्व प्रधान बनूंगा, मीठा बनूंगा, तो मतलब सिमरन। अब कार्य करते समय अटेंशन रखूं, श्वासों श्वास मैं अटेंशन रखूं कि मेरे को बाबा से कनेक्शन रख के ही हर काम करना है, चाहे मैं खाना खाऊं, चाहे मैं सैर करूं, चाहे मैं पेशेंट देखूं, मैं घर में खाना बनाऊं, जो भी काम करना है, चाहे सोने जाऊं, कुछ भी करूं, ब्रश करूं, हमेशा बाबा से करंट जुड़ी रहे, कर्म योगी बन के करूं, तो मैं सत्व प्रधान बनूं, तो मैं मीठा बनूं, ठीक है, समझ में ही बात आपको कैसे। तो जितना मनन चिंतन मंथन सिमरन, सिमरन माना सिमर सिमर सुख पाओ, जितना हम बाबा की बातों को कार्य करते समय याद में रखेंगे, जो मक्खन निकलेगा उसको याद रखेंगे, तो वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर कर्म करेंगे तो रिकॉर्ड होगा, नए संस्कार बनते जाएंगे। तो जितना हम करते जाएंगे इस एबीसीडी का, इस मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, उतनी हमारे दिल सच्ची होती जाएगी, मतलब उतनी हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी तो शांति माना, अब पास्ट के विचार आने बंद हो जाएंगे, पहले क्या विचार आ रहे थे, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को, ये पास्ट के विचार है ना, भूतकाल के विचार अब आने बंद हो गए, और भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड रहूंगा, बाबा से कंबाइंड रहूंगा तो मैं फिर मैं वही बाबा से कंबाइंड होकर सोचना देखना, सोचना देखना पढ़ना सुनना बोलना खाना पीना चलना हर काम बाबा की याद में हो, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में हो, इसको बोलते हैं शांति। अब शांति जमा हो गई दिल में, है ना, अब शांति के बाद क्या किया, अब शांति जब आ गई, पास्ट भी खत्म, भविष्य भी खत्म, अब वर्तमान बाबा से कंबाइंड हो, अब बाबा से जब कंबाइंड हो गया, फालतू विचार नहीं आ रहे, अभी मैं जो भी आत्माएं दुनिया में है, मेरे घर में है चाहे बाहर है, कोई रिश्तेदार है, हर आत्मा को उसके रोल के साथ, उसका जो पार्ट है, जैसा भी पार्ट है उसका, वो आपके पति भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, सास ससुर, आपके भाई बहन, या कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, उनका कोई भी पार्ट है, वो कैसा भी पार्ट प्ले करते हैं, दुख देने का पार्ट, सुख देने का पार्ट, कुछ भी पार्ट प्ले करते हैं, तो उनके हर पार्ट के साथ, हर रोल के साथ, उन हर रोल को इंपॉर्टेंस देना और बिना शर्त के आदर से उसको स्वीकार करना और फिर भी उनकी देखभाल करना, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में रहकर उनकी देखभाल करना। इंग्लिश में मैं अगर कहूं, मुझे माताएं समझते इंग्लिश में, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द यूनिवर्स। विश्व में हर आत्मा को उसके रोल के साथ, उसके रोल को महत्व देते हुए बिना शर्त के आदर के साथ स्वीकार करना और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में रह करके उसकी पालना करना, यह है रूहानी प्यार। जैसे ईश्वर भगवान करता है ना, भगवान क्या करता है, चाहे वो चाहे कोई व्यक्ति भी हो, चाहे बाबा के बच्चे हो, बाबा के बच्चों में वैरायटी बच्चे हैं, कोई रोज मुरली सुनते हैं, कोई रोज मुरली नहीं सुनते हैं, कोई 4 बजे उठते हैं, कोई 5 बजे उठते हैं, आगे पीछे करते हैं, कोई उठ के सो जाते हैं, कोई अमृत वेला करते करते भी सोते रहते हैं, है ना। तो बाबा फिर भी क्या करता है, सबको सबको प्यार करता नहीं करता, सबको स्वीकार करता नहीं करता, या बोलता है जो 4 बजे उठ के बहुत अच्छा योग करने वाला वो मीठे बच्चे बाकी कड़वे बच्चे, ऐसे बोलता है क्या, सबको पालना देता है ना। चाहे सब, ये तो बीके, फिर नॉन बीके में सब तरह के लोग हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई गलत काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई पाप करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई आतंकवादी है, तो बाबा क्या आतंकवादी को स्वीकार नहीं करता है क्या, क्या आतंकवादी आतंकवादी आदमी है, इसकी हवा पानी बंद कर दो चलो, ऐसे करता है क्या। आतंकवादी भी जब अटैक करने के लिए जाता है पहले पहले बाबा के पास जाता है, डाकू भी पहले जाता है किसके पास जाता है, बाबा के पास जाता नहीं जाता, बाबा आज मेरा काम सफल हो जाए, उसे लगता है हाँ बाबा परमात्मा मेरी तरफ, अल्लाह मेरी तरफ देख के कह रहा है हाँ बच्चे जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं लगता है। इंसान के पास नहीं आते वो, भगवान के पास जाते हैं, है ना। कोई भी हो तो भगवान सबको स्वीकार करता है, तो हम बच्चों को भी ऐसा बनना है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो सुधरने वाले ही नहीं है, ये तो सुधर नहीं सकते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं बाबा का, ये तो नाम ऐसे करते हैं, ये तो बहुत खराब, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। बाबा किसको ऐसा नहीं बोलता है, और हम क्या करते हैं, सोचो। देखो महाभारत देखिए ना, महाभारत देखिए आपने सबने, रामायण देखी होगी सबने। रामायण में क्या होता है, उसमें दो पार्टी हैं, एक राम की पार्टी एक रावण की पार्टी। राम की पार्टी में कौन कौन है, राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौशल्या के कई मंत्रा ना, ऐसे ही ये लोग हैं ना, हनुमान भी है उसकी पार्टी। और इधर रावण की पार्टी में कौन कौन है, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण शूर्पणखा मंदोदरी ये सब लोग हैं ना। किंतु हमारे घर में पता क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है, वहां पर तो एक रोल फिक्स रहता है भाई, मेघनाथ मेघनाथ का रोल प्ले करेगा, कुंभकर्ण कुंभकर्ण का रोल प्ले करेगा। हमारे घरों में क्या होता है पता है, क्या होता है बोलो, सभी अनुभवी हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले राम राम का रोल प्ले कर रहा है, थोड़ी देर में देखो वही रावण बन जाता है, थोड़ी देर में देखो अभी रावण थोड़ी देर मेघनाथ बन जाएगा, थोड़ी देर कुंभकर्ण बन जाएगा, अभी देखो सीता दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में क्या होगा मंथरा बन जाएगी, थोड़ी देर में देखो तो शूर्पणखा बन जाएगी, है ना, है ना। क्योंकि हमारे ही भाई बहन, हमारे ही पति पत्नी बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे थोड़ी देर में रूप बदल लेते हैं। हम कहते नहीं तेरे को, तुम तो निकम्मे हो, तुम ऐसे नहीं, कभी ऐसा बोलते हैं, जब बोलते तो हमें स्वीकार नहीं करते। आप जो भी रोल प्ले करें, मान लीजिए आपका बच्चा ही है कोई, या कोई बच्ची है या कोई और भी है, मान लीजिए वो सो रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको, आप बोलो, आप उसको बोलना शुरू कर दो, उठाया एक बार उठाया दो बार उठाया तो तीसरी बार उठाने लगे तो उठते नहीं तो क्या बोलोगे, गुस्सा करना शुरू कर देते हो ना, तुम तो कुंभकर्ण की तरह हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, उठते ही नहीं हो, इतनी देर हो गई, 4 आवाज तुमको दिया, 5 आवाज दिया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसे प्यार से स्वीकार करना, हो सकता है उसको नींद ना आई हो, उसको तबीयत खराब हो, उसको कुछ देर तक पढ़ रहा हो, कुछ कर रहा हो, कोई बात भी जो भी हो स्वीकार करना। फिर जब प्यार से जब उठ जाए, प्यार हो जाए, फिर उसको प्यार से बाद में दिन में उसमें प्यार से समझाओ, है ना। ऐसी रिएक्शन करना, इससे इसको रूहानी प्यार नहीं कहते हैं, इसमें मोह के कारण आप बोलते हो। हम मोह के कारण ऐसा बोलते हैं, तुम ऐसे करो, तुम्हारा ऐसा है और तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, इससे प्यार खत्म होता है। आप बात समझ रहे हैं? नहीं समझ, ऊपर से जा रही है। तो हर आत्मा को यह स्वीकार करना अति जरूरी है। ये सच्ची प्यार, सच्ची दिल बनने का साधन है। जब तक आप सबको स्वीकार नहीं करेंगे, सारी दुनिया में एक व्यक्ति भी आपका ऐसा है, सारी दुनिया में, मैंने कहा सारे विश्व में एक व्यक्ति भी ऐसा है जिसको आप स्वीकार नहीं करते आदर के साथ, बिना शर्त के, हम भगवान के नजदीक नहीं जा सकते, हम शिव बाबा के नजदीक नहीं जा सकते, हम सूक्ष्म मतलब में जा नहीं सकते। आप जानते हैं सूक्ष्म वतन क्या चीज है? सूक्ष्म वतन क्या है बोलो, जिसको पता है हाथ उठाओ। सूक्ष्म वतन क्या है? माताओं को तो पता होता है। अच्छा शिव बाबा क्या है? जैसे आत्मा है, पता है आत्मा में सात गुण निकल रहे हैं, आत्मा यहां पर, आत्मा के दिल है ये ना, दिल से फिर वो जो सात एनर्जी आत्मा में है उससे विवेक बनता है। विवेक माना सत्य को प्रकटने की शक्ति बनती है, सत्य को प्रकटने की शक्ति से फिर निर्णय शक्ति बनती है, और उससे फिर चित्त बनता है। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे हमारा मन, हमारी स्मृतियां होती हैं, जो रिकॉर्ड होती है ना हमारी स्मृतियां, हमारे आत्मा में एक सॉफ्ट कॉपी है और ब्रेन में एक हार्ड कॉपी है, और सारी सारी स्मृतियां सत्युग से लेकर कलयुग के अंत तक, संगम के अंत तक, पूरी स्मृतियां आत्मा में रिकॉर्ड है, और सारी सारी स्मृतियां, सारी यादें चित्त के आधार पर खुलती हैं। अगर मेरा चित्त शांत है, एकाग्र है, आनंदमय है, इसलिए आज की मुरली में था परमात्मा सदा सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा सात गुणों का सागर है, तो परमात्मा का दिल कितना बड़ा होगा बताओ? सागर में कितना पानी होता है? 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, कितना पानी होता है बोलो? हाँ, तो परमात्मा में कितना ज्ञान है? ज्ञान का सागर है ना परमात्मा, कितना ज्ञान है परमात्मा का? बेअंत है ना, बेहद है ना। तो परमात्मा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, रूहानी प्रेम का सागर है, रूहानी प्रेम का भी सागर है वो। शांति का, बाबा शिव बाबा शांति का सागर कैसे है? शिव बाबा को न पास्ट का भी, पास्ट की कभी कोई बात याद नहीं आती, पास्ट के बाद सोचता ही नहीं है, भविष्य में क्या होना है परमात्मा सोचता नहीं है, वर्तमान में भी जो होने वाला है उसको वही टच होता है। वर्तमान में भी बाबा क्या करता है? ड्रामा में जो होने वाला उसको टच होता है, वो बोल देता है। जो 1950 में बोला बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन द्वारा, अभी जो 2000 में बोला, 2000 में जो बोलना था वो 1950 में नहीं बोला, 1960 में नहीं बोला, 1960 में नहीं बोला, वो 2000 में बोला। जो 2000 में बोलना था, 2017 में बोलना था, या 2015 में बोलना था, 2000 में नहीं बोला, 2008 में नहीं बोला। वो एक्यूरेट टाइम पर जो बोलना है, जो बोलना है, जो संकल्प, वही टच होता है। और हम बच्चे क्या करते हैं? अधिकतर पास्ट में खोए रहते हैं, या भविष्य में क्या होगा उसके सोचते रहते हैं, या वर्तमान में भी फालतू की बातें सोचते रहते हैं। अब बाप समान कैसे बनेंगे हम? जब बाप से कंबाइंड हो जाएंगे तब हम सोचें, तब हमें पास्ट याद नहीं आएगा, भविष्य याद नहीं आएगा, वर्तमान में बाबा के सात गुणों का सागर वो हमें फील हो, वो कंबाइंड होकर फिर हम सोचें, फिर देखें, उस नजर से देखें सबको, उस नजर से पढ़ें, उस नजर से सुनें, उस नजर से सुन खाएं, उस नजर से बोलें। मैं हूं बाबा का बच्चा तो ये भी बाबा के बच्चे, भले मेरा पति है, भले मेरा बच्चा है, भले मेरा बेटी है, भले मेरा कोई भी है, उस नजर से देखें, तब रूहानी प्यार पैदा होता है, तब हम सबको स्वीकार कर, जजमेंटल नहीं बनते, रूहानी प्यार। और जब ऐसा रूहानी प्यार सबके लिए हो जाएगा तो हम बाबा के पास, बाबा के सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। सूक्ष्म वतन मतलब बाबा का दिल। आत्मा का दिल कैसा है? छोटा सा है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी पवित्रता है, थोड़ी शांति है। थोड़ी शांति कैसे है? कोई हमें थोड़ा ज्यादा बोलता है हम क्या कहते हैं? बस और नहीं बोलो, मेरी शांति खत्म हो गई, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं बहुत सहन कर लिया अभी और नहीं सहन कर सकती हूं, है ना, यही बोलते हैं ना। میں نے تمہاری باتیں بہت سہن کر لی سنبھالی, اور نہیں اور, نہیں, اور میرے پاس اور سہن شکتی نہیں ہے, اور سنبھالی شکتی نہیں ہے, ایسے بولتے ہیں نا. پر بابا کے پاس, بابا ساگر ہے. تو جب آپ سب کو سویکار کر لیتے ہیں تو بابا کا دل کتنا بڑا ہوگا سوچو آپ. گیان کا ساگر, پوترتا کا ساگر, شانتی کا ساگر, روحانی پیار کا ساگر, اتندر سکھ کا ساگر, آنند کا ساگر, شکتیوں کا ساگر. تو بابا کا دل کتنا بڑا ہوگا. بابا کا دل, بابا کہتا ہے میرا دل اتنا بڑا ہے اس دل پہ آپ آ کے سو سکتے ہو, اس پہ پیدل سیر کر سکتے ہو, اس پہ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ, جو اپنے آفس میں آفس کا کام کرنا میرے دل پہ بیٹھ کے کر سکتے ہو. تو اس سوکشم وطن کچھ اور نہیں, بابا کا دل ہے, ٹھیک ہے. اور اس دل میں, بابا کے دل میں ابھی تک کون جا کے بیٹھا ہے؟ ایک ہی بچہ جا کے بیٹھا ہے. کون سا جا کے بیٹھ گیا؟ پرماننٹ جا کے بیٹھ گیا, برہما بابا. برہما بابا نے شیو بابا کو ایکوریٹ فالو کیا 100%. ایک ہی سپوت بچہ ہے جس میں بابا کا آگیاکاری ایک دم 100% وفادار, 100% ایماندار, 100% فرمان بردار رہا. جیسے ہی بابا آیا, بابا نے اپنا تن من دھن بابا پہ سوا کر دیا, اور ہم نے کیا کیا, کیا سوا. بولا تو صحیح کہ تو کتنا پرسنٹ کیا, انسٹالمنٹ میں کرتے ہیں ہم لوگ, ایک مہینے میں اتنا, پچھلے مہینے اتنا, تیسرے مہینے میں اتنا. بابا نے سب کچھ دے دیا, اپنا جیون بابا کو دے دیا. تو اس لیے بابا کا نمبر ون سپوت بچہ ایک, بابا کہتے ہیں اس لیے میرا ایک ہی بچہ ہے, کون ہے؟ برہما بابا. تو برہما بابا نے اپنے بدھی کو ایک دم سمپورن پاون ستوپردان بنا دیا, من کو بھی سمپورن پاون ستوپردان بنا دیا, سنسکار بھی ستوپردان بنا دیا, اور وہ بابا کے دل تک پہ جا کے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. بابا کے دل میں, پھر بابا کا دل سچی صاف ہے, برہما بابا کے دل سچی صاف, اس میں آ کے کون بیٹھ گیا؟ شیو بابا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے سچے دل پر صاحب راج جی کی, جس نے شیو بابا کو, جو شیو بابا کے دل میں جا کے بیٹھا ہوا ہے, سوکشم وطن میں شیو بابا کے دل میں بیٹھا ہے, اور شیو بابا اس کے دل میں بیٹھا ہے, تو کیا بن گیا؟ باپ دادا. سمجھے باپ دادا کون ہے؟ تو یہ باپ دادا ہے, گیان کا ساگر, پوترتا, شانتی کا ساگر, پریم سکھ آنند شکتیوں کا ساگر. برہما بابا کا آکاری شریر ہے اور اس میں بیٹھا ہے شیو بابا, ساگر ہے وہ. اور جو بابا کا ایسا سچا سپوت بچہ بنے گا, آگیاکاری, وفادار, ایماندار, فرمان بردار بچہ بنے گا, سپوت ہوگا, وہ یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا؟ شیو بابا کے دل میں جا کے بیٹھے گا, دل میں جا کے دل کا انوبھو کرے گا, ارتھات سوکشم وطن واسی بنے گا, ٹھیک ہے. تو بابا کی آگیا کیا ہے آج کی مرلی میں؟ کیا آگیا تھی بابا کی؟ بچے بہت میٹھے بنو, تم کرودھ کا انش بھی تمہارے اندر نہ ہو. تو بابا کے اگر ہم بچے ستو پردھان بنے, پامن بنے, تو کیا ہوگا؟ ہم کہاں جا کے بیٹھ جائیں گے؟ کہاں بیٹھیں گے؟ بابا کے دل میں, ہے نا. تو جب ہم ایسے, جب سب کو بابا کی آگیا ہے, بچے سب سے پیار سے چلو, سب کو پیار کرو, پیار مانے سب کو سویکار کرو. کوئی کیسا بھی ہے, ڈراما میں اس کا رول ہے. سمجھو اگر مہابھارت میں دریودھن نہ ہوتا, دشاسن نہ ہوتا, شکونی نہ ہوتا, تو مہابھارت ہوتی؟ بتاؤ. آپ پڑھتے مہابھارت کو؟ پڑھتے نہیں؟ پڑھتے نا. رامائن میں اگر راون نہ ہوتا, میگناتھ نہ ہوتا, کمبھکرن نہ ہوتا, تو رامائن ہوتی؟ خالی رام ہوتا, لکشمن سیتا ہوتی, کیا مزہ آتا؟ کوئی مزہ ہی نہیں تھا نا. تو ایسے ہی جو ہمارے گھر میں, ہمارے پریوار میں, ہماری دنیا میں, جہاں پر ہم رہتے ہیں, وہاں پہ سب ہمارے پاس ہونا چاہیے نا. راون بھی ہونا چاہیے, کمبھکرن بھی ہونا چاہیے, میگناتھ بھی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہنومان بھی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, سارے ہونے چاہیے, تبھی تو مزہ ہے جیون کا نا. تو ان سب کو سویکار کرو. جب آپ ایسا سویکار کرو گے تو اتیندر سکھ کی انوبھوتی ہوگی. اتیندر سکھ میں نا ہم بابا کی گود کی انوبھوتی کریں گے, تب لگے گا بابا کی گود میں, بابا میرا, میں بابا کا. ایسا رسمی فیل ہوگا آپ کو کہ جیسے میں بابا کی گود میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں, اور بابا مجھے پیار کر رہے ہیں. بچے کیسے ہو, طبیعت ٹھیک ہے بابا؟ مجھے آپ نے مرلی میں بتایا نا, یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی. اچھا بچے, اس کا مطلب یہ ہے, बच्चे सब ठीक चल रहा है आपका, ऐसा फील होगा। और ये जो फीलिंग है ना, बाबा मेरे से बात कर रहा है, मैं बाबा के बिल्कुल पास हूं, तो क्या हुआ कि अंदर से क्या आएगा, पाना था सो पा लिया। ये जो फीलिंग अंदर से आती, पाना था सो पा लिया, इतनी फीलिंग आएगी, वो सागर है ना, सुख का सागर, आनंद का सागर, उसकी गोदी में आप बैठे, उसकी गोदी में बैठे कैसी फीलिंग आएगी मुझे बताओ, कैसी फीलिंग आएगी, एकदम संतुष्ट, सब कुछ, कोई इच्छा, कोई इच्छा रहेगी फिर आपकी बताओ, कोई इच्छा रहेगी? तो अतिंद्रिय सुख माना जिसमें आप संतुष्ट महसूस करो, कोई इच्छा ना रहे, अतिंद्रिय सुख माना ये फीलिंग है। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति, जहां इच्छा है वहां सुख नहीं है, जहां कोई भी थोड़ी एक भी इच्छा है तो वहां सुख नहीं है, एक भी इच्छा है तो, और जहां संतुष्ट है वहां सुख है। ये एक तो सुख होता खाने का, देखने का, पढ़ने का सुख, सुनने का, वो इंद्रियों का सुख है, उसकी आदत पड़ जाती है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। और ये जो सुख है ना, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का सुख है, इसको बोलते हैं अतिंद्रिय सुख, सुपर सेंसर जॉय। ये जो फीलिंग बड़ी वंडरफुल फीलिंग है, ठीक है, ये बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है। इस फीलिंग में जब आओगे आप, तो इसको कहेंगे अतिंद्रिय सुख। ये आप बाबा के दिल में चले गए, मतलब सच्चे दिल पर साहब राजी हो गए। तो जब तक आप सबको माफ नहीं कर देंगे, सबको स्वीकार नहीं कर लेंगे जो जैसा भी है, तब तक आप बाबा की गोद का अनुभव नहीं कर सकते, मतलब जब तक आप सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकते। और जब अतिंद्र सुख का अनुभव हो जाएगा तो आनंद आएगा, आनंद माना, आनंद माना बंधन, आत्मा उड़ता पंछी है, देह और देह की दुनिया के पार उड़ता पंछी कहां जाएगा, आत्मा कहां रहती है, परमधाम में रहती है। तो आत्मा को देह और देह की दुनिया के पार एकदम बंधन से मुक्त हो जाए, परमात्मा की गोद में चली जाए। हमारा सिर्फ डेस्टिनेशन क्या है, परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा की गोद में जाके उसमें समा जाए, लवलीन हो जाए, वो स्थिति आनंद की स्थिति है। तो जब मैं बाबा के पास बैठा हूं, बाबा की गोद में बैठा हूं, तो फिर मैं बाबा से उसके प्यार में लवलीन हो गया। तो ये स्थिति आनंद की स्थिति है। तो जितना आप इसका अनुभव करते जाओगे, ज्ञान का, एबीसीडी का अनुभव करते जाओगे, उसका मनन चिंतन मंथन करते जाओगे, उतना अधिक पवित्रता आती जाएगी, मतलब उतना आपके दिल सच्ची और साफ होती जा रही, उतनी शांति आती गई, उतना रूहानी प्यार बढ़ता गया, उतना अतिंद्र सुख आता गया, उतना आनंद आता गया, उससे शक्तियां आती गई। शक्ति कौन सी आती गई, सत्य को परखने शक्ति आ गई। सत्य पहले क्या, झूठ को परख रहे थे, झूठ को राइट, झूठ को सत्य समझ रहे थे, अभी सत्य को परखने शक्ति आ गई। मुझे ये यहां टाइम लगाना है, मुझे तो अमृत वेला करना ही है। पहले झूठ क्या कह रहा था, नहीं नहीं थोड़ी देर में उठ के 5 बजे करेंगे, 6 बजे कर लेंगे, रात को देर सोए थे, नहीं मुझे अभी करना है, उठना है, अमृत वेला करना है। क्योंकि 4 मिनट की आनंद की स्थिति, 4 मिनट आनंद की स्थिति 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। अगर 4 मिनट आप आनंद में रह गए तो क्या हो जाएगा, 4 घंटे गहरी नींद जितना अनुभव हो जाएगा। हम क्यों सोते रहते हैं कई बार अमृत वेले, क्यों सोते हैं, रात को नींद अच्छी आती नहीं, तो हम क्या करते हैं, चलो सारा दिन काम करना, सारा दिन सोने का समय नहीं मिला, चलो 1 घंटा सो जाओ, इसलिए अमृत वेला अच्छा नहीं होता, बैठ के भी सो जाते हैं। अगर सही उमंग उत्साह से हम अमृत वेला करें, सत्य को प्रति शक्ति समझ आ जाए कि ये योग कितना जरूरी है अमृत वेले का, इसमें हम क्या प्राप्ति कर सकते हैं, और अमृत वेले ही पॉसिबल है कि आप इतना, क्योंकि जब उठते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 3 या 4 होती है, और तुरंत एबीसीडी से बाबा की याद का अनुभव करना शुरू करो, एबीसीडी को अंदर रिवाइज रियलाइज करना शुरू करो, तो एकदम आप 2 पे पहुंच जाओगे। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0, ब्रह्मा बाबा की 1, 2 से कनेक्शन हुआ, आनंद की स्थिति आ गई। और अगर ऐसी स्थिति में आप आ गए तो क्या हो जाएगा, अगर ये थोड़ी देर भी आपकी स्थिति रह गई तो क्या होगा, 4 मिनट की अगर ऐसी स्थिति रह गई, बाबा की गोद में लवलीन होने की स्थिति आ गई, तो आपको 4 घंटे जितना फ्रेश हो जाओ, जैसे आप 4 घंटा नींद करके उठे हो, और फिर सारा दिन आपको थकावट नहीं होगी। मुझे याद आता है एक बार दादी के साथ, बड़ी दादी थी ना, जब बड़ी दादी थे, दादी प्रकाशमणि थे, तो मैं उनके साथ लगभग 20 साल का मुझे अनुभव रहा, 20 साल के लगभग मेरे दादी, 20 मतलब 18-20 साल का दादी के साथ रहने का अनुभव हुआ। और 12 साल तक मैं उनके बहुत ही रोजगार मतलब रोज दादी के पास जाना ही होता था मुझे, मुरली के तुरंत बाद दादी ने कहा था मुझे 5 मिनट मिलके जाओ रोज। तो दादी कभी कभी कहा कर दादी के पास जाते ना सुबह सुबह, तो दादी कहती थी, दादी कभी कभी ऐसे बाबा की फोटो को देख के बोलती थी, गुप्ता जी मैं ना बाला इनसे ना जो बाबा से जैसे मैं आपसे बात करते हैं ऐसे बाबा से बात करते हैं। फिर कभी कभी दादी बोलती कि गुप्ता जी जैसे ना मैं कभी थक जाती हूँ ना तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। तो एक बार जब हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था, माउंट आबू की बात है, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो उस दिन क्या हुआ, मैं सारा दिन, ये हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, साथ में उनके युगल होते हैं, मान लीजिए 20 पेशेंट आए तो 20 उनके युगल 40 हो गए, अभी तो 50 आते हैं, 50 एक ग्रुप में आते हैं, 50 साथ वाले होते हैं, 100 लोग हो जाते हैं, कभी 150 भी हो जाते हैं। तो मैं जो है वो उसमें क्या सारा दिन मैं उसमें बिजी रहा, सारा दिन लेक्चर भी होते हैं, फिर हॉस्पिटल में जो पेशेंट दाखिल होते हैं वो भी देखने होते हैं, और फिर वो जो पेशेंट्स होते हैं ना हार्ट के पेशेंट उनकी तबीयत भी खराब होती रहती है, साथ वालों की तबीयत खराब होती रहती है। तो मैं उस मेरा दिन में सारा दिन बिजी रहा, और रात में भी मैं एक कमरे में एक की तबीयत खराब हो, फिर उसकी दूसरी तरफ से फोन आ जाए उसकी तबीयत खराब हो रही है, फिर तीसरे की तबीयत खराब हो रही है, चौथे की तबीयत खराब हो रही है, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे तीसरे कमरे में, ऐसे अपने कमरे में मुश्किल से मैं आ पा रहा था, मतलब आ ही नहीं पाया। मैं लगभग 3 बजे अपने कमरे में आकर रात को पहुंचा, मतलब रात को ना अगले दिन सुबह, रात शायद सोया नहीं, पेशेंट की तबीयत खराब होती रही, कभी किसी की उनको दवाई देना देखना, तब और डॉक्टर हमारे साथ नहीं होते थे तो मैं अकेला ही होता था, शायद आप में चक्कर लगाता रहा पेशेंट देखते हुए। और फिर क्या हुआ कि 3 बजे कमरे में आके बैठा, बेड पे आके बैठा, जैसे आके बैठा तो मेरे को सारे शरीर में दर्द हो रहा था, सारा मतलब हाथ पैर सिर सब दर्द हो रहा था बहुत जोर से, और बहुत थकावट महसूस हो रही थी। तो ऐसे ही मैंने बैठे बैठे बाबा को बोला, बाबा मेरे को ये लग रहा था अभी मेरे को 3:30 बजे उठना है, फिर योग कराने जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होके फिर मेरे को वापस क्लास लेनी है, तो मैं सारा ऐसे उनको वॉकिंग करानी है, तो मेरे को एक के बाद एक लगातार बिजी रहूंगा दिन में, फिर पेशेंट भी देखने हैं, हॉस्पिटल में भी देखने हैं, बहुत सारे काम थे। तो मेरे को इतनी थकावट हो रही थी, मैंने कहा बाबा, ऐसे बैठ के मैंने बोला बाबा को बेड पे बैठ के, बाबा आज तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मन आज मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल थका हुआ हूं, मैं शायद आज सोया नहीं हूं। तभी मुझे याद आया, दादी की बात याद आई कि दादी, मैंने कहा दादी ने मुझे कहा था मैं जब मैं थक जाती हूँ मतलब मेरे को बाबा क्या करता है, मेरे को मालिश कर देता है। तो मैंने मन में बाबा को बोला, बाबा तुम आप दादी की मालिश कर सकते, मेरी नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला, अचानक क्या हुआ मेरे अंदर से ऐसे कुछ शुरू हुआ, अंदर एकदम अंदर से बोल बाबा, ऊपर से नहीं बोला, मुंह से नहीं बोला, अंदर मैं बोल रहा हूँ बाबा को, बात कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ऐसे किया तो अंदर मेरे अंदर कुछ ऐसे ना शुरू हुआ, अंदर से कुछ ऐसे होता है अंदर शरीर में, ऊपर नहीं, अंदर अंदर शरीर के अंदर ऐसा कुछ ना, जैसे ऐसे कोई मतलब हलचल शुरू हुई अंदर से ना, कुछ वाइब्रेशन की हलचल शुरू हुई, और यहाँ से होती 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 यहाँ से सारे शरीर में से होती होती फिर पैरों से होती नीचे निकल गए। और मैं समझता मुश्किल से 30-40 सेकंड हुआ होगा, और 30-40 सेकंड में ऐसा वंडरफुल अनुभव हुआ कि उसके 40 सेकंड के बाद मेरा पूरी की पूरी बॉडी जैसे होती ना, पूरा कहीं भी दर्द नहीं रहा, एकदम सारा शरीर फूल जैसा हो गया। तो ये बाबा की मतलब बाबा के साथ सच्चा अनुभव करो ना, आनंद की स्थिति का अनुभव मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, पेशेंट्स केयर में बहुत बिजी रहते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं और भी दूसरे पेशेंट्स होते हैं, आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं, हमको कई बार पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी तक हम लोग वापस आते हैं, फिर आपके सारा दिन काम करना होता है। तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि रात में काम किया दिन में आराम करेंगे, नहीं, जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में इतनी अच्छी अनुभूति होती है कि सारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, थकावट सारी गायब हो जाती है। तो ये आनंद की स्थिति इतनी वंडरफुल है। तो सत्य को परखने की शक्ति, अगर आप सत्य को परखने की शक्ति आपके अंदर आ जाए, ये सत्य है कि मुझे अमृत वेला करना है, मुझे मुरली में जाना ही है, मैं कितना भी बिजी हूं मुरली में आ जाता हूं, बड़े लेट आऊंगा पर मुरली में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मुरली में बड़ी दादी ने कहा था, जैसे मैं ओम शांति भवन में ऊपर होते थे ना, तो मैं कभी कभी पेशेंट के कारण मैं नहीं आ पाता था, पेशेंट दादी शाम को मिलती थी हमें, जब शाम को हम जाते ना पांडव, दादी कहती गुप्ता जी शाम को सुबह क्लास में क्यों नहीं आए, मैं दादी वो ऐसा हुआ कि मैं ना सुबह सीरियस पेशेंट आ गया, हॉस्पिटल आ रहा था तभी ऐसा, हॉस्पिटल से जब यहाँ मुरली में आ रहे थे ओम शांति भवन, तो रास्ते में एकदम हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि पेशेंट सीरियस है, तो वहाँ चला गया। कहते कितने बजे पेशेंट बेटर हुआ? मैं दादी 15-20 मिनट में पेशेंट की तबीयत अच्छी हुई थी, ये फिर क्यों नहीं आ गए? मैंने दादी क्लास में लेट तो नहीं आ सकते? दादी कहते नहीं, अगर धारणा के लिए मुख्य सार पे भी आ जाए तो भी अच्छी बात है, आ जाओ, क्लास में अटेंडेंस तो लगनी चाहिए। तो तब से मैंने देखा कि मैंने तब से नियम बना लिया कि क्लास में हम कभी भी कुछ भी हो जाए जाना ही है, भले थोड़ा लेट अभी होगा तो भी जाएंगे, समय पर आएंगे, पर अगर कोई मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, पेशेंट आ गया तो भी हम जाएंगे। क्लास में अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। तो सत्य को प्रकट शक्ति आ गई कि मुझे वहां जाना ही है, सारे काम छोड़ के भी जाना ही है, पहले बाबा फिर दूसरी दुनिया, पहले बाबा फिर दुनिया। तो पहले बाबा को पकड़ो तो सत्य को प्रकट शक्ति आ गई, फिर सत्य निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। जब सत्य निर्णय करने की शक्ति है तो विस्तार को सार बनाने की शक्ति आ गई, फिर समेटने की शक्ति आ गई, समेट के मन बुद्धि बाबा में लगा लिया। नहीं तो विस्तार को सार बन, अगर सत्य को नहीं परखा, सत्य को रॉन्ग को झूठ को हमने सत्य रख लिया, सत्य निर्णय नहीं किया तो छोटी बात बड़ी हो जाती है, नहीं तो पहाड़ भी राई हो जाता है। जब पहाड़ को हम राई कर लेते हैं समेट मन बुद्धि समेट के बाबा में लगा सकते हैं, जो छोटी सी बात का पहाड़ बना लेता है वो कभी भी बाबा में मन बुद्धि लगा नहीं सकता है। समेटने शक्ति आई, अब मेरी मन बुद्धि बाबा में लग गई, अब नीचे दुनिया वाले क्या करते हैं, ये शरीर क्या करता है, नीचे खींचता है। आप ऊपर को जाओ क्या करेंगे, घर वाले क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे ना। तो सहन करने की शक्ति आ गई, बाबा से करंट मिली ना तो सहन करने की शक्ति आ गई और समाने की शक्ति आ गई। फिर सहन तो किया, 10 लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये किया मैंने कि नहीं, समा लिया और फिर सामना भी कर लिया। और भी किसी ने कुछ कहा, अच्छा कोई बात नहीं बोल लो, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरी बड़ाई करो तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा और बुराई करो तो मैं बुरा नहीं होता हूं, मैं तो जानता हूं मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं, तो इसलिए आपको परवाह नहीं रहती फिर दुनिया की। और फिर सहयोग, फिर कोई मेरे से सहयोग मांगे, देवी सहयोग भी कर दिया। तो जब इस तरह से हम रहने लगते हैं, करने लगते हैं, तो हमारी अवस्था अच्छी से अच्छी होती जाती है। तो जब ऐसा दिल जब हो जाता है हमारा, दिल में सातों एनर्जी भर जाती है, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ये सच्ची दिल बन गई। सच्ची दिल माना जिस दिल में मैं आत्मा हूं, ये पक्का है। जिस दिल में ABCD है, दे के संबंध, दे के स्वभाव, सबका दे के पदार्थ नहीं है, ये बाबा की गारंटी है। अगर दिल में किसी देहधारी को रखा, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, तो मैं आपके दिल में नहीं रह सकता, ठीक है। हम कहते हैं नहीं बाबा, बस ये मेरा बच्चा है ना, मेरे को बहुत प्यारा है, एक यहां रहता है, तुम यहां के रह जाओ, बीच में आके तुम भी रह लो। बाबा कहता नहीं, मुझे कमरा खाली चाहिए। कोई भी देहधारी को रखा, इवन अपनी देह को भी रखा, तो बाबा उस दिल में आके नहीं रह सकता। तो सच्ची दिल माना जिस दिल में सिर्फ सच्ची और साफ दिल माना जिस दिल में सिर्फ एक शिव बाबा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिसके दिल में सिर्फ बाबा है, कोई लौकिक संबंधी अलौकिक संबंधी नहीं है, कोई लौकिक देहधारी नहीं है, वो सच्ची दिल वाला है, उस दिल में शिव बाबा है। और जिसके दिल में शिव बाबा आ गया, वो कौन आ गया, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर आ गया। उसके क्या होगा, ऑटोमेटिक दिमाग क्या होगा, उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी, उसकी नाक कान कैसे हो जाएंगे, हार्ट कैसा हो जाएगा, उसका हाजमा कैसा हो जाएगा, उसका ये पुरानी गाड़ी भी साथ देगी, खटारा गाड़ी भले हो, टायर भले पंचर हो, है ना, घुटने खराब हो, कमर खराब हो, फिर भी वो अमृतेला करेगा, मुरली सुनने जाएगा, अटेंशन रखेगा, है ना, तो बाबा की श्रीमत से चलेगा। तो जो ऐसा करेगा उसके सातों गुण आत्मा में भर जाएंगे, और जो ऐसा बच्चा, जो ऐसा आज्ञाकारी बनेगा, वफादार बनेगा, ईमानदार फरमानबरदार बनेगा, वो यहां रहते भी सूक्ष्म वतन में, मतलब बाबा के दिल तक पे बैठा रहेगा। तो अगर हमको सच्ची दिल पर साहबराजी का मतलब यही है कि अपने दिल में सिर्फ शिव बाबा के अलावा किसी को ना बिठाओ, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा और बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहो, दिन रात यही लगन लगी रहे। एक दादी की बात मैं लास्ट में बताता हूँ, फिर क्लास पूरी करता हूँ। एक बार दादी ने ऐसी, मैं सुबह सुबह दादी के पास गया, तो दादी ने कहा गुप्ता जी आप मुझे बताओ अष्टतन कौन बनेंगे। मैंने कहा दादी आप बताइए। कहते आप मुरलियां बहुत पढ़ते हो, आपका मुरली पे मनन चिंतन मंथन बहुत होता है, तो आप मुझे बताओ। मैंने कहा दादी आप बताओ, मुझे नहीं पता। तो दादी कहती है जो बाबा की, जो बच्चे बाबा की मुरली का मुरली बाबा और बाबा को बाबा की मुरली जिनको श्वासों श्वास याद रहती है, बाबा और बाबा की मुरली श्वासों श्वास उनके अंदर याद रहती है, वो बनते हैं अष्टोत्तम। श्वासों श्वास मतलब हर सेकंड हर संकल्प हर श्वास में बाबा बाबा हमेशा उनको बाबा के साथ रहते हैं, वो उनकी अटूट याद सहज योगी निरंतर योगी होते हैं, वो कर्म योगी होते हैं, हर कर्म करते बाबा की याद रहती है, ऐसे बनते हैं अष्टोत्तम। तो बनना है अष्टोत्तम आपको, ऐसी लगन पक्की जगह लगा लगा। तो अगर अष्टोत्तम बनने की ये पुरुषार्थ है तो एक दिन में अगर देखें ध्यान से देखें, हम 16,000 सांस लेते हैं दिन में, 14 सांस एक मिनट में, और रात को हम 10 सांस लेते हैं, तो 16,000 सांस मतलब हर सांस में बाबा हो, इतना बाबा के साथ का अनुभव हो, एक संबंध का अनुभव हो, हर समय साथ का अनुभव हो, तो ऐसे जो हर संबंध का जिसको अनुभव होगा बाबा के साथ, वो ही बाबा को हर समय हर सांस में याद कर सकता है। और हमारी दादियां, आप देखो दादी प्रकाशमणि को तो आपने देखा नहीं होगा, बहुत सारी माताओं ने पुरानी माताएं सब दादी के साथ रही है, देखा होगा। जो नई बहने हैं दादी जानकी को देखते हैं हम, कैसे हैं गुलजार दादी, कैसी हैं, हर समय देखो तो बाबा की याद में है। इस दुनिया में रहते भी दुनिया में नहीं है, बाबा की सूक्ष्म वतन में ही रहती हैं, बाबा की दिल में रहती हैं। तो ऐसे बच्चे अष्टोत्तम बनते हैं, वो सारा दिन मुरली पे टेंशन रहता है उनका, मुरली 8-10 बार पढ़ते हैं, 20-20 बार। देखो जब दादी बड़ी बीमार, बड़ी दादी बीमार थी तो भी दादी को कभी कहते दादी मुरली सुनेंगे तो दादी तुरंत आंख खोल देती थी। तो ये मुरली से प्यार चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने दादी ने कहा अच्छा 108 की माला में कौन आते हैं, अच्छा आप में से कौन आना चाहते हैं 108 की माला में, हाथ उठाओ जरा देखें कौन कौन माताएं आ सकती हैं, ऊंचा हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं उठा, 108 की माला में, अच्छा नीचे कर दो। चलो मैं आपको पुरुषार्थ बताता हूँ, दादी ने जो मुझे बताया, दादी ने कहा जो दिन में 100 बार जिनको 100 बार बाबा और बाबा की मुरली याद आती है, ठीक है आती है याद 100 बार, 100 बार बाबा की याद आती है, मतलब एक घंटे में 6 बार, 16 घंटा तुम जागते हैं ना, 16 घंटा में एक घंटे हर 10 मिनट में बाबा की याद आनी चाहिए, हर 10 मिनट में बाबा की याद आनी चाहिए, बाबा की मुरली, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने कल क्या कहा था, बाबा ने कहा ज्ञान रूप बसंत बनो, आज की मुरली में क्या कहा, सबसे अच्छा धंधा कौन सा है, बाप और वस्ते को याद करना, बार बार बुद्धि में आए, बार बार आज का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, बार बार बुद्धि में आए, बार बार बुद्धि में आना चाहिए, बार बार बुद्धि में आए। एक घंटे में 6 बार ज्यादा है क्या, एक घंटे में 6 बार ज्यादा है, तो 6 बार आना चाहिए, तो 100 की माला में आ जाएंगे, है ना। 16,000 की माला में कौन आएंगे, राजा रानी त्रेता तक 16,000 ही बनेंगे, कौन आएगा उसकी माला में। दादी ने बताया जो एक दिन में 8 पैर होते हैं, जो कम से कम 3 घंटे में 8 बार मुरली रिवाइज करें, कितनी बार, 8 बार करेंगे, सारी मुरली नहीं, सिर्फ मान लो एक से मीठे बच्चे कर लिया, आज का गीत भी याद रहा, स्लोगन याद आ गया, वरदान याद आ गया, सारी मुरली की बात नहीं है, सोते समय पूरी मुरली पढ़ के सो, किंतु 8 बार कम से कम बाबा और बाबा की मुरली याद आए, ठीक है। और 9 लाख में कौन आएंगे, जो कम से कम 1 बार रोज क्लास में जाके मुरली सुनेंगे, पहली प्रजा होगी 9 लाख जो कम से कम 1 बार क्लास में जाके मुरली सुने, और एक बार मुरली में बाबा ने दिया हुआ है, ये अब कौन सी साल की मुरली, 71 की मुरली कौन सी में दिया हुआ है, कि जो मुरली में अमृत वेले योग में या मुरली में अगर 1 घंटा लेट तो 1 जन्म लेट, 2 घंटा लेट तो 2 जन्म लेट, 3 घंटा लेट तो 3 जन्म लेट, 4 घंटा लेट तो 4 घंटा लेट, और शाम को सुनने वाले सीधे 12 घंटा सीधे त्रेता में उतरेंगे सीधे जाके। इसलिए सब काम छोड़ के कैसे भी करके काम समेट के बाबा की मुरली पहले जाओ, मुरली में जाओ और फिर खाना खाओ, अमृत वेला करके जल्दी जल्दी खाना बना दो बच्चों के लिए, सब काम करके मुरली सुन के आ जाओ, बाकी चपाती बाद में आके बना दो, पर पहले बाबा को जो टॉप प्रायोरिटी बाबा को देगा, बाबा भी उसको टॉप प्रायोरिटी देगा। जो ऐसे दिल में रहेगा, बाबा की श्रीमत पे चलेगा, वो बनेगा सच्चे दिल, उसके दिल में बाबा आके रहेगा और बाबा के दिल में वो रहेगा, राइट। इसलिए बाबा लास्ट ईयर से बोल रहे हैं, बाबा के दिल में कौन कौन? बच्चे। और बच्चों के दिल में कौन? बाबा, मेरा बाबा। तो ये प्रैक्टिकल अभी अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो जितना हमें अभ्यास करेंगे, हमारी चित्त शांत हो जाएगी, एकाग्र आनंद, जब हमारे दिल में जितना सत्य होगा उतना हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाएगा, तो हम सच्चित आनंद स्वरूप बन जाएंगे। और जब हमारा चित्त आनंद स्वरूप होगा तो हमारी स्मृतियां कौन सी खुलेंगी? फरिश्ता सुदेवता स्वरूप की स्मृति खुलती जाएगी, फाइलें वही खुलेंगी और हमें ऑटोमेटिक हमारा फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा, हमें देवता स्वरूप दिखाई देगा अपना, और हम बाबा की गोद में जाके बाबा से सूक्ष्म वतन के तो अनुभव करेंगे, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करेंगे, मनसा सेवा भी करेंगे, और ऑटोमेटिक हमारी क्या होगा, हमारी सेवा, हमारी मनसा सेवा भी होती रहेगी और ऑटोमेटिक हमें सत्य की सीन सीनियर दिखाई देती रहेंगी। जो बाबा कहते हैं अंत में विनाश के समय क्या होगा, इधर विनाश हो रहा होगा, लोग रो रहे होंगे, हाय गए है ना, चिल्ला रहे होंगे, और हम क्या करेंगे, हमें सत्युग दिखाई देगा, आप सत्युग के अपने महल दिखाई देंगे, अपना स्वरूप दिखाई देगा। कि तो जब हमारा दिल में बाबा होगा, हमारे दिल में सिर्फ बाबा के अलावा कोई नहीं होगा, तो हमारा चित्त में आनंद होगा, और जब आनंद होगा दिल में तो हमारी स्मृतियां मन में जो स्मृतियां हैं वो खुलेंगी, कौन सी वाली, सत्युग वाली, फरिश्ता स्थिति वाली। और जब ऐसी स्मृतियां खुलेंगी तो हमारी वृत्ति रूहानी हो जाएगी, उसे रूहानी वायुमंडल बन जाएगा, भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो जाएगी, शुभ 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 वाइब्रेशन सबके प्रति जाएंगे, और संकल्प हमारे पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली कल्याणकारी हो जाएंगे, उससे नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो इससे अंत में हम सारे अपने चेहरे और चलन से, चेहरा माना मन, चेहरे पर जो होता है वो मन में होता है, वो चेहरे में होता है, दिखाई देता है, चेहरे और चलन माना कर्म। तो हमारे चेहरे और चलन से हम बाबा को, अब लोग सुनने वाले नहीं होंगे, आखिरी समय में सुनने वाले लोग नहीं होंगे, ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं, हमारे चेहरे और चलन से उन पर बाबा की प्रत्यक्षता होगी, हमारे मस्तक से दिखाई देगा, हमारे नैन से बाबा दिखाई देगा, है ना, हमारे रोम रोम से बाबा दिखाई देगा, जैसे बड़ी दादी के दिखाई देता था, है ना। तो ऐसे दादी प्रकाशमणि के दिन स्मृति दिवस पे आप आए हैं, तो ऐसे दादी के समान, है ना, ऐसा बन के दिखाएं, कर्मातीत बन के दिखाएं, कर्मेंद्र जीत बन के दिखाएं, माया जीत बन के दिखाएं, प्रकृति जीत बन के दिखाएं, विकर्मा जीत बन के दिखाएं, और कर्मातीत दादी के समान न्यारा प्यारा फरिश्ता बन के दिखाएं। जैसे दादी के दिल में सदा बाबा रहता था, ऐसे ही अपने दिल में क्या रखें, सदा किसको रखेंगे, बाबा, है ना, कौन सा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।
तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया,
पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया।
अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार,
अब तो ये जीवन है।
तेरी कीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी कीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना।
तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना।
ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार,
ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार।
तेरी कीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी कीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।